हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं दूसरी ओर आदित्य झलक से सीधे बात करने के लिए उसके ऑफिस निकलने ही वाला था कि तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बज उठी। आदित्य दरवाजे की ओर देखने लगा था। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि दादाजी और अनामिका खड़े हुए थे। दादाजी को वहां देखकर आदित्य के माथे पर बल पड़ गए। उधर बलबीर जी खुद दिग्विजय जी से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने दिग्विजय को अपने घर के दरवाजे पर देखा वे भी पूरी तरह से चौंक गए। वहीं दूसरी ओर रणविजय गंभीर चेहरे के साथ अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि सिद्धार्थ खुराना इस तरह से कहाँ जा सकता है, क्योंकि उसने उसके ऑफिस की सारी जानकारी निकलवा ली थी। ऐसी कोई बिजनेस मीटिंग तय नहीं थी जिसके लिए उसे बाहर जाना पड़े, और सिद्धार्थ खुराना अचानक गायब था। रणविजय के मन में अजीब सी शंका उठने लगी थी। वो सोचने लगा था कि सिद्धार्थ को इस तरह से कहीं नहीं जाना चाहिए था। उसे सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा के साथ समय बिताना चाहिए था, क्योंकि वो आकांक्षा के और करीब होना चाहिए था। ये सोचकर उसने तय किया कि झलक के साथ साथ अब सिद्धार्थ खुराना का भी पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार वो गया कहाँ है। सिद्धार्थ बिना बताए गया था, इसलिए रणविजय ने रौनित को बुलाया और सीधे सवाल किया, सिद्धार्थ कहाँ है? रौनित ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस्टर रणविजय, मुझे नहीं पता कि मिस्टर खुराना कहाँ गए हैं। मैं बस एक मामूली नौकर हूँ, वो मुझे बताकर थोड़ी ना जाएंगे। रौनित की ये बात सुनकर रणविजय ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें पता है सिद्धार्थ कहाँ है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि साफ साफ बता दो। एक पल के लिए रौनित के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उसे सिद्धार्थ की धमकी याद आ गई थी। सिद्धार्थ ने साफ कहा था कि अगर उसने उसके बारे में किसी को कुछ बताया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसे इस तरह गायब कर देगा कि कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। रौनित घबरा कर बोला, आप जो करना है कीजिए, चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गए हैं। रणविजय का गुस्सा चरम पर था। तभी दादी वहां आ गई, उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। दादी ने शांत स्वर में कहा, बेटा क्या हो गया? सिद्धार्थ इस तरह से कहीं जाता रहता है, लेकिन जब से झलक उसकी जिंदगी में आई थी तब से वो कई दिनों तक कहीं नहीं गया। यहाँ तक कि एक बार जब उसकी जापान में इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो उसने वो मीटिंग भी पोस्टपोन कर दी थी सिर्फ और सिर्फ झलक के लिए। लेकिन मुझे लगता है इस बार ऐसा कुछ नहीं है, वो जरूर किसी जरूरी काम से गया होगा। अगर उसने हमें नहीं बताया तो हमें इंतजार करना चाहिए। और तुम तो जानते ही हो कि अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है जिसमें पूरे देश के टॉप बिजनेसमैन शामिल होने वाले हैं, और उन सबके सामने सिद्धार्थ खुराना को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। बस हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक बार जब वो अवार्ड मिल जाएगा तो खुराना परिवार की मान प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी, और उसी दिन शाम को हम सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी भी कर देंगे। ये सुनकर रणविजय ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में शंका अभी भी थी। उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ का इस तरह से गायब होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। उधर आकांक्षा भी सिद्धार्थ को फोन पर फोन मिलाकर थक चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। रणविजय ने दादी की बातों को हाँ में टाल दिया और बाहर आकर आकांक्षा को कॉल लगाया। क्या सिद्धार्थ से बात हुई? उसने पूछा। आकांक्षा झुंझलाते हुए बोली, सिद्धार्थ को गए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन 2 दिनों में उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। एक बात बताओ, तुमने उसके साथ कोई बेवकूफी तो नहीं करती? रणविजय का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये तुम बताओगी मुझे, तुमने उसे कुछ बोला है क्या? रणविजय आगे बोला, तुम तो वैसे भी बिना सोचे समझे काम करती हो। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है तो उसका खामियाजा मुझे क्यों भुगतना पड़े? आकांक्षा ने जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, देखिए मिस्टर खुराना, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मुझे छोड़कर चला जाए, वो वापस आएगा, और वैसे भी उसने खुद मुझसे कहा था कि वो बहुत जल्द मुझसे शादी करेगा। आकांक्षा ने व्यंग्य से कहा, ऊपर से झलक का भी कुछ पता नहीं चल रहा। आपको कुछ जानकारी मिली? अगर अपना गुस्सा कहीं और निकालना है तो झलक पर निकालिए, अब तक तो आपका प्लान पूरा हो चुका होता। अगर झलक बीच में नहीं आती, सब कुछ उसी की वजह से खराब हुआ है। रणविजय का चेहरा सख्त हो गया। अब बात सिर्फ सिद्धार्थ की नहीं थी, झलक फिर से उसके रास्ते में खड़ी थी। अब तो मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ, और जैसे ही वो मुझे मिलेगी उसे अपने ही हाथों से उसकी हत्या कर दूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे जिंदा छोड़कर, मुझे अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखना ही चाहिए था। पहले तो मुझे इस बात का अफसोस हुआ था कि मेरी खुशियां देखने के लिए झलक जिंदा ना रही, लेकिन एक बार फिर वो मेरी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए आ गई। आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। ये बोलकर वो गुस्से में रणविजय को खरी खोटी सुनाने लगी थी। वहीं रणवीर ने गुस्से में फोन काट दिया और सोचने लगा कि इसकी तो हद से भी ज्यादा पर निकल आए हैं। इसे ये तक नहीं पता कि रणविजय के खेल में ये सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। ऊपर से रणविजय को अनामिका के बारे में कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसने अपने आदमी हर जगह फैला रखे थे, लेकिन कोई कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा था। अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसके फ्रस्ट्रेशन लेवल की इस वक्त कोई सीमा ही नहीं थी। फिलहाल वहीं दूसरी ओर जैसे ही आदित्य, जो कि झलक के ऑफिस के लिए निकल रहा था, उसने दादाजी के साथ रवि को हाथों में बुके लिए खड़े देखा, वो चेहरा देखते ही भर गया। उसने तुरंत अपने दादाजी को आवाज लगाई। बलबीर जी वहां आए और उन्हें देखकर बोले, दिग्विजय ये क्या कर रहा है तू? मैं तो तुझसे मिलने ही आ रहा था। एक बात बता, इन फूलों को लाने का क्या चक्कर है? क्या आप अपनी पोती की गलती की माफी मांगने आए हैं? ये सुनकर दिग्विजय जी अचानक ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, क्या बकवास कर रहा है तू? मैं यहाँ अपनी इच्छा से लेकर आया हूँ। ऐसी कौन सी गलती करती मेरी पोती की मैं उसकी माफी मांगने आऊँ? देख बलबीर, मेरी पोती ने कोई गलती नहीं की है। गलती तो सिर्फ और सिर्फ तेरे बच्चों से हुई है, उसने तो बस उन्हें उनकी सजा दी है। तभी अनामिका की नज़र पट्टी बंधे मुंह और स्ट्रेचिंग लगी हालत में बैठे कबीर और अभय पर पड़ी। वो जल्दी से उनके पास पहुंची और भोलेपन से बोली, कबीर जी, अभय जी, आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को ये सब देखना पड़ा, लेकिन प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, आदित्य हैरानी में डूब गया। वहीं कबीर उसे ऐसे घूर कर देख रहा था मानो अनामिका उसके सामने खड़ी होकर उसका मजाक उड़ा रही हो। तब अनामिका जल्दी से बोली, प्लीज आप हमारी बातों को गलत मत समझिए, हम तो आपके लिए गेट वेल सून का बुके लेकर आए हैं और कुछ फ्रूट्स भी लाए हैं। प्लीज आप लोग जल्दी से खाइए और ठीक हो जाइए। और प्लीज कबीर जी, अगर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे तो क्या एक बार और आप मेरी बहन से पिट सकते हैं? जैसे ही अनामिका ने मासूमियत से ये कहा, कबीर का चेहरा तमतमा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। टूटी फूटी जुबान में वो बोला, तुम यहाँ खड़ी होकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। अनामिका ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, सॉरी सॉरी, अगर आपको लगा कि हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ, लेकिन आप नहीं जानते, जब से मेरी बहन ने आप दोनों को पीटा है उसके चेहरे की मुस्कान लौट आई है, वो बातें करने लगी है, उसने पहली बार पराठा खाया है, आप जानते हैं इसका मतलब।
जैसे ही अनामिका एक्साइटेड होकर ये सब बताने लगी, अभय और कबीर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि इसमें उनकी क्या गलती थी, गलत तो उनके साथ हुआ था और यहाँ आकर ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, और ऊपर से इन्हें ठीक भी इसलिए करना चाहते हैं ताकि एक बार फिर उनसे पिट सके। अब तो अनामिका में भी उन्हें अपना सीधा दुश्मन नजर आने लगा था। कबीर गुस्से से अनामिका को घूरते हुए कुछ तेज बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनामिका तुरंत उसके पास बैठ गई और उसे कंधे से पकड़कर बोली, शांत हो जाइए कबीर जी, ऐसी हालत में गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। अनामिका की बात सुनकर कबीर का मन तो कर रहा था कि इसी वक्त उसका गला दबा दे, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वहीं दिग्विजय जी, बलबीर जी और आदित्य तीनों ही हैरानी से अनामिका की बातें सुन रहे थे। तब बलबीर ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा, बिटिया, हमें तो नहीं लगा था कि तुम लोग इतने पागल होगे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमें तो तुम्हारी बहन पागल लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो ठीक नहीं रहेगी, लेकिन जिस तरह की बातें तुम कर रही हो, तुम्हें देखकर भी यही लग रहा है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसका जवाब तो मैं अभी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सब समझा दूंगा। ये सुनकर आदित्य और बलबीर जी एक दूसरे को देखने लगे। वहीं आदित्य तुरंत दादाजी की ओर मुड़कर बोला,